ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा चुनाव के संबंध में सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग ने किया विचार विमर्श। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी दलों को प्रधानमंत्री सुशीला कार्के ने किया आह्वान। आगामी फागुन 21 को होने वाले चुनाव में 10,16,000 मतदाता जुड़े हैं, चुनाव आयोग द्वारा जानकारी। और एआई पर अत्यधिक निर्भरता मनुष्य की समस्या समाधान क्षमता को कमजोर करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का निष्कर्ष। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा चुनाव की तैयारियों के विषय में सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिक प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में हुई बैठक में कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने बताया कि आयोग सरकार की प्राथमिकता के अनुसार आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव कराने को पूरी तरह तैयार है। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भंडारी ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल हो जाने के बाद यदि सुरक्षा संबंधी नीति में तत्काल संशोधन नहीं किया गया तो चुनाव के समय में समस्या आ सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने शांति सुरक्षा संबंधी निकायों और गृह मंत्रालय से समय रहते तैयारी के लिए आग्रह भी किया। भंडारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने शांति सुरक्षा के विषय में आवश्यक आश्वासन दे दिया है और चुनाव आयोग व सरकार के बीच विचार विमर्श से यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि फागुन 21 के लिए निर्धारित चुनाव के लिए मौजूदा कानून के अनुसार कार्यविधि, निर्देशिका और आचार संहिता तैयार की जा चुकी है और अब दलीय सहमति और सरकार के साथ समन्वय में आचार संहिता लागू भी की जाएगी। बैठक में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत उम्मीदवारों के नाम प्रस्तुत करने के समय में परिवर्तन करने पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा आने की बात कही गई। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष समय परिवर्तन न करने का आग्रह किया है। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भंडारी ने स्पष्ट किया कि घोषित चुनाव कराने के लिए समय कम है और सीमित जनशक्ति है, इसलिए समय सारिणी में परिवर्तन करने पर असुविधा होगी। विचार विमर्श में प्रधानमंत्री सुशीला कार्के ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होकर शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री कार्के ने कहा कि विगत में हुई त्रुटियों के कारण भाद्र 23 और 24 की घटनाएं हुई और उनसे उत्पन्न आवेग और आलोचना का सामना सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने जनता पर गहरा प्रभाव डाला है और सरकार तथा राजनीतिक दलों को जनता को दिए जाने वाले संदेश तथा परिवर्तन के उद्देश्य के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देशभर में 10 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। फागुन 21 के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव के संबंध में आज आयोजित सर्वपक्षीय विचार विमर्श के दौरान निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराय ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 10,16,754 नए मतदाता बढ़े हैं, वहीं चुनाव को लक्षित कर आयोग में दर्ज हुए दलों की संख्या 114 हो गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि फागुन 21 के चुनाव को सफल बनाना सभी नेपालियों का दायित्व है। मानव अधिकार तथा शांति समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई भेंट के दौरान राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लंबे समय तक निर्दलीय सरकार का बने रहना लोकतंत्र की मूल मान्यता और नागरिक सर्वोच्चता के खिलाफ है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि यदि फागुन 21 के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो देश अनिश्चितता की ओर चला जाएगा। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा और नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बीच भेंटवार्ता हुई है। सभापति देउवा निवास महाराजगंज में आज हुई भेंट में उनके बीच समसामयिक राजनीतिक विषय पर बातचीत हुई। ये जानकारी सभापति देउवा के सचिवालय ने दी। मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपाल अंतर्गत बनने वाली दो सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 2,37,00,000 अमेरिकी डॉलर बराबर का समझौता हुआ है। एमसीए नेपाल ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी साझा की है। विज्ञप्ति के अनुसार एमसीसी नेपाल कॉम्पैक्ट अंतर्गत की सड़क मरम्मत परियोजना क्रियान्वयन में पूर्व पश्चिम राजमार्ग के धानखोला से लमही खंड की स्तरोन्नति के लिए करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर का समझौता हुआ है। वहीं हाल ही में इस सड़क खंड की स्तरोन्नति और नारायणघाट मुगलिंग सड़क खंड की आवधिक मरम्मत के सुपरिवेक्षण के लिए करीब 36.6 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य बराबर का समझौता हुआ है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्ग के धानखोला से लमही तक के 40 किलोमीटर सड़क खंड की स्तरोन्नति कर उसे 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा और नारायण घाट मुगलिंग सड़क खंड की आवधिक मरम्मत की जाएगी। गृहमंत्री ओम प्रकाश अड़ियाल ने कहा कि आपदा की पूर्व तैयारी, पूर्व सूचना और पूर्वानुमान पर आधारित पूर्व कार्यों को और मजबूत, संस्थागत और व्यापक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा आज से अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र इसीमोड खुमलटार में आयोजित पूर्वानुमान पर आधारित पूर्व कार्य संबंधी चौथे राष्ट्रीय संवाद में गृहमंत्री अड़ियाल ने ये बात कही। विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों के ऋण के बोझ को कम करने और सुरक्षित आप्रवासन संबंधी कार्य स्थानीय सरकार द्वारा ही शुरू करने की आवश्यकता पर सरोकार वालों ने जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन के संदर्भ में सुरक्षित आप्रवासन के लिए राष्ट्रीय संजाल द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि श्रमिक यथासंभव कम लागत में विदेश जा सकें तभी राष्ट्र और परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजु दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल चीन के बीच स्थित लेन्दे खोला में मितेरी पुल के निर्माण के बाद अध्यागमन कार्यालय रसुआ ने रसुआ केरुंग आने जाने के लिए सीमा पास नवीनीकरण करना शुरू कर दिया है। मितेरी पुल का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद सामान आयात की प्रक्रिया में केरुंग की ओर जाने वाले वाहन चालकों के पास का नवीनीकरण कल से शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी होने के कारण संबंधित दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद ही रसुआगढ़ी सीमा चौकी के संचालन का दिन निर्धारित किया जा सकता है। ये जानकारी रसुआ के प्रमुख जिला अधिकारी राजेश पंथी ने दी। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के अंतर्गत पुटबल गोरुसिंगी सड़क खंड के स्तरोन्नति परियोजना के लिए नदीजन्य सामग्री की कमी के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार की परियोजना के आगे बढ़ने को एक वर्ष होने को है, लेकिन आवश्यक नदीजन्य सामग्री और मिट्टी की कमी के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। ये जानकारी परियोजना ने दी। परियोजना के लिए लगभग 30 लाख घनमीटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक है, जिसमें अब तक केवल लगभग 5,80,000 घनमीटर ही प्राप्त हुई है। ये जानकारी परियोजना कार्यालय ने दी। पुटबल से कपिलवस्तु की बेल नदी तक लगभग 50 किलोमीटर सड़क को दो भागों में विभाजित करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवश्यक नदीजन्य सामग्री के लिए स्रोत की तलाश की जा रही है। ये जानकारी निर्माण कंपनी के इंजीनियर राजकुमार श्रेष्ठ ने दी। राजमार्ग क्षेत्र में आने वाले स्थानीय तहों से उन्होंने संभावित स्रोत की खोज में सहयोग के लिए आग्रह किया। विश्व बैंक द्वारा 69 किलोमीटर लंबी सड़क स्तरोन्नति के लिए 35 अरब रूपये उपलब्ध कराने के समझौते के बाद ही राजमार्ग की स्तरोन्नति शुरू हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के निष्कर्षों ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई प्रविधि पर बढ़ती निर्भरता मनुष्य की स्वयं समस्याओं का समाधान करने की मूल क्षमता को कमजोर कर सकती है। अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि एआई उपकरणों की सहायता के बिना सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की हमारी क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो सकती है। अध्ययन से पता चला है कि एआई के लगातार और गहन उपयोग से हमारी आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और जटिल स्थितियों में निपुणता जैसे महत्वपूर्ण मानसिक कौशल प्रभावित हो सकते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि एआई पर अत्यधिक भरोसा हमारे निर्णय लेने के कौशल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। एआई सिफारिशों को बिना प्रश्न किए स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे हमारी स्वयं की विवेक बुद्धि और परख की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्रवृत्ति दीर्घकाल में समाज के लिए चिंता का विषय बन सकती है। यदि भविष्य की पीढ़ियों में समस्या समाधान का मूल कौशल ही कम हो जाता है तो उनके लिए नई और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना कठिन हो सकता है, जहां एआई के पास भी तैयार जवाब न हो। अध्ययन एआई प्रविधि के उपयोग को पूर्णतः त्यागने की बात नहीं करता, बल्कि एक स्वस्थ संतुलन बनाने पर जोर देता है। इसके अनुसार एआई को एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि मानवीय बुद्धिमत्ता के पूर्ण विकल्प के रूप में। हमें अपने मानसिक कसरत को जारी रखने और जटिल समस्याओं से स्वयं जूझने के लिए भी अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण सामाजिक तकनीकी मुद्दे की ओर इशारा करता है, जहां एआई निसंदेह उत्पादकता बढ़ाने और जीवन को सरल बनाने में सहायक है, वहीं इसकी अंधी निर्भरता के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। भविष्य में एआई के साथ सहजीवन कैसे बनाया जाए, जहां तकनीक हमारी क्षमताओं का विस्तार करे न कि उनका ह्रास, ये एक बड़ी चुनौती और विचार का विषय बन गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा चुनाव के संबंध में सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन आयोग ने किया विचार विमर्श। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी दलों को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया आह्वान। आगामी फागुन 21 को होने वाले चुनाव में 10,16,000 मतदाता जुड़े हैं, चुनाव आयोग द्वारा जानकारी। और एआई पर अत्यधिक निर्भरता मनुष्य की समस्या समाधान क्षमता को कमजोर करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का निष्कर्ष। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।